ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। शिक्षकों की जायज मांगे पूरी करने के लिए सरकार तैयार है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। संवाद में आने का शिक्षकों से किया आग्रह। रासोपा सभापति रवि लामी छाने को भेजा गया कारागार। मापदंड के विपरीत संचालित वाहनों पर रोक लगाने की भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय कर रहा है तैयारी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ में बढ़ोतरी करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार में गिरावट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि शिक्षकों की जायज मांगों को पूरा करने के लिए सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री ओली ने उन्हें संवाद में आने का आग्रह भी किया। आज काठमांडू में आयोजित हिमालयन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि भू राजनीति में कोई गलती न करते हुए नेपाल अपनी स्वाधीनता और राष्ट्रीय हित के लिए सचेत प्रयास करेगा। इस बीच प्रधानमंत्री ओली ने शिक्षक समुदाय की मांगों और आंदोलन के संबंध में आज संबंधित मंत्रियों और सचिवों के साथ विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबार में उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पोडेल, गृहमंत्री रमेश लेखक, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री विद्या भट्टाराय, मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल और संबंधित मंत्रालयों के सचिवों के साथ विमर्श में उन्होंने और गृह कार्य करके वार्ता से समस्या का समाधान करने की बात पर जोर दिया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामी छाने को कारागार भेजा गया है। दो दिन जिला प्रहरी कार्यालय रूपंदेही की हिरासत में रहने के बाद लामी छाने को आज जिला कारागार चलान किया गया है। आज जिला अदालत में पेश करके आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें कारागार भेजा गया। लुम्बिनी प्रदेश सरकार ने कहा है कि सिंचाई पूर्वाधार विकास के मामले में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। लुम्बिनी के ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय के मुताबिक प्रदेश में अब तक 403 सिंचाई बांधों और मुहानों और 832 किलोमीटर पक्के नहर का निर्माण संपन्न हुआ है। लिफ्ट सिंचाई प्रणाली अंतर्गत 107 परियोजनाएं संचालित हैं, जिसमें चालू आर्थिक वर्ष में दो और परियोजनाएं जुड़ी हैं। पंप हाउस की संख्या 386 पहुंच गई है। वहीं 82 परियोजनाओं को विद्युतीकृत किया गया है। लुम्बिनी सरकार के मुताबिक यहां 55% भू क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विस्तार हुआ है। सिंचाई दिवस 2081 के अवसर पर आज मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चेत नारायण आचार्य ने ये बातें बताई। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल ने कहा कि गृह मंत्रालय के साथ समन्वय में मापदंड के विपरीत संचालित वाहनों पर रोक लगाई जाएगी। आज मंत्रालय में यातायात व्यवसायियों और मजदूरों के साथ बातचीत के दौरान मंत्री दाहाल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि नियम विपरीत संचालित वाहनों पर रोक लगाना सिर्फ सड़क तथा यातायात विभाग से ही संभव नहीं होगा। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
बाजू दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते। आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि धरानवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबार में आज सुनसरी की धरान उपमहानगरपालिका के प्रमुख हरकराज राय सहित प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई मुलाकात में प्रधानमंत्री ओली ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा धरानवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए संघीय सरकार बजट का प्रबंध सहित अन्य विषयों में आवश्यक सुविधा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ओली ने धरान की कचरा प्रबंधन व्यवस्था के लिए पारंपरिक नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक से लैस लैंडफिल साइट बनाए जाने पर जोर दिया है। दीर्घकालीन एवं सुरक्षित यातायात नीति निर्माण की तैयारी को समर्थन करने के उद्देश्य से तीसरा अंतर्राष्ट्रीय यातायात सम्मेलन 2025 का आयोजन चैत 29 गते से 31 गते तक किया जाएगा। यह सम्मेलन सोसाइटी ऑफ ट्रांसपोर्ट इंजीनियर्स नेपाल द्वारा आयोजित तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के सह आयोजन में होगा। सम्मेलन में यातायात क्षेत्र के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, प्रविधिविदों, नव प्रवर्तकों, यानी इनोवेटर्स और सरोकार वाली संस्थाओं के बीच सहयोग के माध्यम से प्रभावी समाधानों की पहचान की जाएगी। साथ ही समग्र यातायात व्यवस्था में सुधार तथा भविष्य में अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर गहन चर्चा होगी। म्यागदी के अन्नपूर्ण हिमालय क्षेत्र में हिमस्खलन आने से दो व्यक्ति लापता हो गए हैं। अन्नपूर्ण हिमालय के कैंप 2 और कैंप 3 के बीच आए हिमस्खलन के बाद सोलुखुम्बू के रीमा शेरपा की स्थिति आज सुबह से अज्ञात है। ये जानकारी सेवन समिट ट्रेकिंग एजेंसी के संचालक निंगमा शेरपा ने दी। आधार शिविर में मौजूद अन्य शेरपा उनकी तलाश में जुट गए हैं और काठमांडू से बचाव दल को हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा गया है। पर्यटन विभाग के अनुसार वसंत ऋतु में 4 समूहों के 30 पुरुष और 12 महिलाओं ने अन्नपूर्ण हिमालय आरोहण की अनुमति ली थी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वरिष्ठ पत्रकार रिसाल का बानेश्वर स्थित फ्रंटलाइन अस्पताल में बीती रात 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से हृदय और फेफड़े की समस्या से जूझ रहे थे। भोजपुर की टेमके मयूंग गांवपालिका वार्ड नंबर 5 मझोले स्थानीय निवासियों की सामान्य जन स्वास्थ्य सेवा के लिए घंटों पैदल चलने की समस्या अब समाप्त हो गई है। गांव में ही आधारभूत सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा शुरू होने के बाद लोगों को राहत मिली है। गांवपालिका की उपाध्यक्ष रामदेवी राय ने बताया कि पूर्ववर्ती खावा गांव विकास समिति के वार्ड नंबर 7, 8 और 9 के निवासियों को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा शुरू की गई है ताकि उन्हें चिकित्सा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें। हिमालयी जिला बाजुरा में इस वर्ष शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले ही पाठ्य पुस्तकें पहुंच गई हैं। जिले के सभी 9 स्थानीय तहों के सामुदायिक विद्यालयों के लिए आवश्यक पाठ्य पुस्तकें चैत 17 गते ही जिले में पहुंच गई। जिला शिक्षा तथा समन्वय इकाई बाजुरा के प्रमुख टीकाराम जोशी ने बताया कि जिले के सभी 9 स्थानीय तहों के सामुदायिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 10 तक की आवश्यक पाठ्य पुस्तकें जिले में पहुंच चुकी हैं और विद्यालयों में उनका वितरण कार्य भी चल रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी आयात पर भारी शुल्क की घोषणा के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव आया है। ट्रंप के ऐलान का असर एशियाई शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार मीडिया ने खबर दी है कि एशियाई शेयर बाजार में आज भारी गिरावट आई है। बीबीसी ने बताया कि चीन का शंघाई कंपोजिट एक समय 8% तक गिर गया था। इसी तरह हांगकांग के हैंग सेन में करीब 13% की गिरावट आई है। हांगकांग शेयर बाजार में एचएसबीसी बैंक के शेयरों में 15% से ज्यादा और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के शेयरों में 18% की गिरावट आई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय इक्विटी बाजार 10 महीनों में अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गया और कुछ ही सेकेंड में निवेशकों के 20 लाख करोड़ रूपये डूब गए। खबरों के मुताबिक ट्रंप की आक्रामक नीति से डरे निवेशकों ने सस्ते में शेयर बेचे हैं। इसी तरह जापानी शेयर मार्केट निके में 6.3% की गिरावट आई है। यूरोपियन शेयर बाजार में भी ट्रंप की घोषणा का असर देखा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका आयात होने वाले सामानों में कम से कम 10 से 50% तक वैश्विक कर लगाने की घोषणा की थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षकों की जायज मांगे पूरी करने के लिए सरकार तैयार है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। संवाद में आने का शिक्षकों से किया आग्रह। रासोपा सभापति रवि लामिछाने को भेजा गया कारागार। मापदंड के विपरीत संचालित वाहनों पर रोक लगाने की भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय कर रहा है तैयारी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ में बढ़ोतरी करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार में गिरावट। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।